नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने इसराइल के दिमोना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास मिसाइलें दागी हैं। बताया जा रहा है कि ये हमले ईरान के बुशहर और नतांज स्थित परमाणु संयंत्रों पर अमरीका इसराइल के हमलों के प्रतिशोध में किए गए। हालांकि इसराइली अधिकारियों ने परमाणु संबंधी स्थलों पर किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन व्यापक हवाई रक्षा गतिविधियों की सूचना दी है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात में रास अल खैमा के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले खतरों को निष्क्रिय कर दिया। अधिकारियों ने लोगों से आग्रह किया है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर अपुष्ट वीडियो या अफवाहें साझा न करें। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने पहले रास अल खैमा पर हमले की धमकी दी थी और लोगों को तुरंत क्षेत्र खाली करने को कहा था। कोर ने कहा कि इस शहर को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इसका इस्तेमाल ईरानी द्वीपों पर हमले करने के लिए किया गया था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज अरात के महापौर यायर मायान के साथ बातचीत की। उन्होंने दिमोना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास ईरान के हमले में घायल हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसराइल के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस हमले में बच्चों सहित 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर तेहरान 48 घंटों के भीतर होर्मुज जल डमरू मध्य को नहीं खोलता है तो वो ईरान के बिजली संयंत्रों पर बड़ा विनाशकारी हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ट्रंप ने आज ट्रुथ सोशल पर ये अल्टीमेटम जारी किया जिसमें उन्होंने ईरान को महत्वपूर्ण जल मार्ग खोलने के लिए ठीक 48 घंटे का समय दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के विभिन्न बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगा जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र पर हमले से होगी। उधर इसराइली रक्षा बलों ने कहा है कि ईरान ने अमरीकी इसराइली संयुक्त ऑपरेशन रोरिंग लॉयन आरंभ होने के बाद पहली बार लगभग 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइल दागी हैं। इसराइल ने कहा कि ईरान वैश्विक खतरा उत्पन्न कर रहा है क्योंकि उसकी मिसाइलें अब लंदन, पेरिस या बर्लिन तक पहुंच सकती हैं। इसराइल ने दावा किया कि ईरान ने क्षेत्र के 12 देशों पर हमले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित ढांचागत केंद्रों पर हुए हमलों की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन के तीसरे दिन कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी बैठक आयोजित की गई। विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ठोस परिणामकारी साझेदारी द्वारा भारत अफ्रीका सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। विद्युत मंत्री ने वैश्विक ऊर्जा संपर्क के परिवर्तनकारी उपाय के तौर पर एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की परिकल्पना का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए दो उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। सुश्री कृष्णा साहा दलगांव से और जीवन गगोई सिसबरगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, मतगणना 4 मई को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है जिसमें आवंटित 10 सीटों में से 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज आकाशदीप चोट के कारण इस सीजन से बाहर हो गए हैं। आकाश को पिछले साल अबूधाबी में हुई नीलामी में कोलकाता ने 1 करोड़ रूपये में खरीदा था। स्क्वाश में मौजूदा चैंपियन अनाहत सिंह ने कल मुंबई में इंडियन ओपन पीएसए स्क्वाश टूर कॉपर प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में तन्वी खन्ना को 3-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।